हाँ रंग के साथ माफ़ी चाहता हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम राउंड टेबल के साथ मैं हूँ असद हसन। प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ असफर इमाम, और आज के प्रोग्राम का मौजू है पनामा गेट, क्या तहकीकात पाकिस्तान में एहतसाब और जवाबदेही के अमल को मज़बूत बना सकती हैं। इस पस मंज़र में हम बात करेंगे। सामीन आप जानते हैं कि पनामा लीक्स के बाद से वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान से मे फेयर फ्लैट्स की ख़रीदारी के ज़राए से शुरू होने वाली तहकीकात अब दीगर माली मामलात पर भी जवाबदेही का सबब है। मामला अदालत के बाद मुश्तरका तहकीकती टीम के पास गया, जिसे GIT के नाम से आप जानते हैं, और इस GIT की रिपोर्ट के बाद दोबारा अदालत उज़्मा में है। और इस मुकदमे के नतायज क्या आते हैं, इससे बिल्कुल कतअ नज़र हम अपने आज के प्रोग्राम में जायज़ा सिर्फ ये लेंगे कि आया ये मुकदमा, ये कज़िया पाकिस्तान के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक बिला इम्तियाज़ एहतसाब और जवाबदेही का ज़रिया बन सकता है। अदालती निज़ाम के इस्तेकाम, समाजी सतह पर अवाम के सियासी शऊर और इंतखाब में उनके चुनाव के लिए किसी मयार को मुतारिफ़ करा सकता है, इदारों को मज़बूत बना सकता है, और सबसे अहम बात यह कि क्या आइंदा सियासत और हुकूमत में आने वाले लोग, पार्टियाँ, शख्सियात इस मुकदमे के सामने रखते हुए इसके पस मंज़र में क्या वो अपने माली मामलात को शफाफ, ट्रांसपेरेंट रखना चाहेंगे, रखेंगे, इस पे हम एनालिसिस लेंगे। अपना पैनल आपके साथ मुतारिफ करा दें, सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो हमारे साथ हैं, नुसरत मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर साफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, दुर्दाना नजम भी हमारे साथ हैं, साफ़ी हैं, राइटर हैं, इकोनॉमिक एंड अकाउंटेबिलिटी इश्यूज़ के ऊपर लिखती हैं, सईद इब्राहिम साहब सोशल साइंटिस्ट हैं, फ्रीलांस हैं, फ़िलासफ़र हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। ज़फ़र अली शाह साहब, आप मुझे मालूम है कि आपकी इस वक्त एक और भी मसरूफियत है, तो मैं जल्दी से आपकी राय लेना चाहूँगा। ये जो मैंने तमहीद बयान की है, मैं जेनेरिक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ इसी पस मंज़र में, इसका ओवरऑल पाकिस्तान के पोलिटिकल और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, जिस तरह की जवाबदेही हम देख रहे हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की?
सर, इस पे इस तमाम कार्रवाई का जो पिछले सवा साल से तकरीबन पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अदारे इसको फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, तो इसके बहुत बड़े गहरे असरात जो हैं वो पड़ेंगे, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बड़े मस्बत असरात भी पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा आगाज हुआ है और ऐसे अंदाज से हुआ है और ऐसी जगह पर जाकर अटका है फैसले के लिए, जिसको हम अपने मुल्क का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो तो मैं समझता हूँ कि और फिर ये अंदाज है और ऐसे शख्स या ऐसे शख्स के कबीले के खिलाफ हुआ है जो कि इस वक्त मुल्क का स्याह सफेद का मालिक है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है और जिसको मेजॉरिटी है हाउस में, तो उसके खिलाफ इस कदम ये खुलकर जो बात आई है सामने और आते 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 आज बिल्कुल उस एज पर पहुंच गई है कि बिल्कुल पूरा मुल्क इस बात का इंतजार कर रहा है और पूरा मुल्क वाच कर रहा है, पूरा मुल्क अपने तौर पर हर शख्स फैसला कर रहा है, फैसले का इंतजार कर रहा है कि अब इस तमाम तहकीकात से, इस तमाम जो पर्दे उठे हैं और चेहरे बेनकाब हुए हैं, तो इससे किसी वक्त भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री या वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ वो अपने इक्तदार से हाथ धो सकता है,
हाथ धो सकते हैं आपके ख्याल में?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
शाह साहब, ये हमें बताएं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि अवामी शऊर की भी बात करें, तो अवाम में तो अवाम के नुमाइंदे भी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए एज्यूम करें, जैसे आप नतीजा बता रहे हैं, या इसके बिल्कुल बरक्स भी हो, सो मैं तो, मेरा तो एक तालिब इल्म की हैसियत से सवाल है कि क्या लोग, शहरी पार्लियामेंटेरियन, वो अपनी राय पर नज़रसानी कर सकते हैं कि उन्हें प्रिंसिपल्स के साथ कहीं पर खड़ा होना है, शख्सियात कितनी अहम है या नहीं, क्या इस बारे में कोई असर नौ गौर हो सकता है, पूरा जैसे कहते हैं ना डिस्कोर्स तब्दील होना सोच से लेके पूरी प्रैक्टिसेस तक?
गौर हो नहीं सकता, सब गौर हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी ने, पाकिस्तानी सोसाइटी ने और पाकिस्तानी पब्लिक ने, पाकिस्तानी जो है ये पब्लिक ओपिनियन मेकर, वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अब ये चेंजेस, तब्दीली और सोच में होगी।
सर, कोई एक ग्रुप आप मुझे बता दें, अगर ये अमेरिका बरतानिया होता, पार्टी के अंदर से पूरा एक ग्रुप बनता और वो कहता कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बारे में आप अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करें, यहाँ तो उनके एडवोकेट बन गए जिनका वो काम भी नहीं है।
मैं यही कर रहा हूँ ना, ये इब्तदा है ना, अभी इब्तदाई इश्क है, मैं पूरी पार्टी में एक वाहिद मैं आदमी हूँ, मतलब और कोई भी
बिल्कुल,
या
बिल्कुल.
किसी हद तक चौधरी निसार अली खान साहब है, उन्होंने अंदर भी और बाहर भी और हर लिहाज से उन्होंने भी बात की है.
सो आप और चौधरी निसार अली खान अभी तक पार्टी में हैं?
हाँ हाँ वो भी पार्टी में है, मैं भी पार्टी में हूँ. और मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि यहाँ का मीडिया जब भी शुरू करता था बात, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कहा जी, उन्होंने ये जवाब दिया. मैंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक फर्द वाहिद या उसके खानदान का तलक है. सही है या गलत है, इल्जाम गलत है या सही है, उन्होंने जो बात सही दी है या गलत दी है, ये तो खुलकर अब कुछ दिनों की बात है, सामने आ जाएगी बात. लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पॉलिटिकल एंटिटी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक बड़ी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है. अब जिन लोगों के बारे में आपने कहा और आपने ये ठीक कहा कि कोई पार्टी के अंदर से आवाज जो है वो नहीं उठी, तो ये पाकिस्तान का कल्चर तब्दील होते थोड़ा तो टाइम लगेगा. अभी तो आगाज है ना, अभी तो ये शुरुआत है. अब मकसद कौन आवाज उठाए, कैबिनेट मीटिंग में कौन आवाज उठाए, उन्हें पता है कि अगर हम कहते हैं कि मियां साहब ये क्या कर रहे हैं आप हटे हैं वजीर आजम, और उनको साहब ये पता है कि जो ही वजीर आजम हटता है तो हम धड़ाम होकर नीचे गिर जाते हैं पूरी की पूरी कैबिनेट, तो वो कैसे कहेंगे. यही हालत जो है वो पार्लिमानी पार्टी का है. तो ये इतना आसान काम नहीं कि फौरी तौर पर ये पाकिस्तान के कल्चर में कोई शख्स पार्टी के अंदर आवाज उठा दे या वो ये कहे. ये बरतानिया तो नहीं है,
ठीक है,
ये अमेरिका तो नहीं है, तो इसलिए जी जी
बहुत शुक्रिया. आप गालिबन मामसरूफ हैं, बेहद शुक्रिया सेनेटर जफर अली शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ एक टेलीविजन सेंटर जी. नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दुर्दाना नजम साहब ने हमें ज्वाइन किया और सईद इब्राहिम साहब वो हमारे साथ होंगे. नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जफर अली शाह साहब की भी, मेरा बिल्कुल वो अगेन थियोरेटिकल और फिलासॉफिकल क्वेश्चन है इस सारे अमल के, ये जो जवाबदेही का अमल या जिस एहतसाब या जिस अकाउंटेबिलिटी से प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली गुजर रही है, इस सारे अमल का निज़ाम पे क्या असर है, निज़ाम के लिए उसके क्या असरात आप देख.
देखिए पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा इतनी स्ट्रॉन्ग जीआईटी बनी है जो जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है. इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके जो मेंबरान को चुना, इसके लिए जगह का मुको मुख्तस किया, और वो भी अपनी प्रिविलेजेस में, ये नहीं किया कि कहीं पर भी आप एक अपना दफ्तर कायम कर लें तो वहाँ पर अमलदारी जो है वो जुडिशरी की नहीं होती. फिर इसके अलावा उनकी उनके तहफ़ का ऐलान किया, फिर उनको 2 करोड़ रुपए दिए कि साहब आप तहकीकात के लिए आपका किसी के मोहताज ना रहें.
और
फिर जो आदमी जो जीआईटी का जो अगर आप देखें कंपोजिशन है जो जिस अंदाज से वो बनी है, वो उसकी बनावट को अगर आप देखें तो उसमें एक आदमी स्टेट बैंक से लिया गया है, एक आदमी उस जो कंपनियों का जो जो रिकॉर्ड रखती है उसमें से लिया गया है, फिर एक आदमी ने जो एमआई से लिया है, एसआई से, तो हर इदारे का एक एक आदमी उसमें उन्होंने ले लिया है जो कि एक्सपर्ट है जिसके पीछे
सही
बैकअप है. तो अब ये एक जीआईटी बनाई है जिससे कि बड़ी बेदारी पैदा हुई है पाकिस्तान में और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनके खिलाफ में. तो मैं तो क्योंकि उनका से मेरा रब भी इस लिहाज से रहा है कि मैं 98-99 में इनका मुशीर रहा हूँ, तो उस हवाले से भी तो मामला ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में 70 साल के बाद में ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई इतनी मजबूत जीआईटी बनी हो और जिसके अंदर जिसने इस जुरत के साथ में भी जो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी गई, उसका स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया गया है,
सही,
उसके बावजूद भी इस किस्म के लोग यहाँ मौजूद है कि जो सच बात कह सकते हैं और हुकूमत के वक्त के खिलाफ तहकीक कर सकते हैं और बुला सकते हैं.
ये तो शो होता है कि इदारे मजबूत हो भी रहे हैं और पोटेंशियल है कि हो भी सकते हैं. दुर्दाना नजम साहबा, आपका एनालिसिस पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के लिए, इस जेआईटी की रिपोर्ट, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनकी जिस तरह से जवाबदेही हुई, क्या हौसला अफजा पहलू है इसके अंदर?
का इतना मतलब एलेबोरेट अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ. और अभी ये सही फरमा रहे थे कि इस किस्म की जीआईटी के जो तहकीकात हैं जीआईटी के लिए वो नहीं हुई. लेकिन ये कहना कि जीआईटी मतलब मैं ये भी नहीं कहना चाह रही खैर कि इस तरह की तहकीकात नहीं हुई. बहुत सारी जीआईटी ऐसी हैं जिनसे बहुत एलेबोरेट तहकीकात हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको सामने, जैसे मॉडल टाउन का किस्सा है, मॉडल टाउन के ऊपर जो जीआईटी बनी है बनी थी उसने तो बहुत ही डिटेल में जाकर एक एक चीज उसमें लिखी है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब पिन डाउन किया है कि कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, اور ہر چیز اس میں واضح طور پر بتائی گئی ہے. اسی طرح سے جب اسامہ بن لادن کا کیس ہوا تھا اس پر جو جی آئی ٹی بنی تھی وہ بھی اتنی ہی کمپریہنسو ہے. لیکن فرق اور لیکن فرق کیا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس جی آئی ٹی میں ایک تو بہت ہائی پروفائل ایک کیس ہے, پرائم منسٹر ہے, اس کی فیملی ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کا پرسنل بزنس کے اوپر جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اور وہ الگ بات ہے کہ پوری کی پوری گورنمنٹ کی مشینری اس پہ لگی ہوئی ہے. تو آبویسلی اس کو ایک ایکسکلوسیو جی آئی ٹی بناتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ اچھا ظاہر ہے جب آپ کو یاد ہوگا جب یوسف اللہ گیلانی بھی گئے تھے سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد ان کو معذور کر دیا گیا تھا تو ہائی پروفائل اس طرح کے کیسز ہوتے رہے. بھٹو سے زیادہ بڑا ہائی پروفائل کیس تو نہیں ہوگا نا, ہم شاید ہسٹری بھول جاتے ہیں. اس طرح کے کئی واقعات ایسے ہوئے, ہم نے تو ہمارے اس کو تو پھانسی بھی ان کو چڑھا دیا گیا تھا. تو اس طرح کے لیکن یہ واقعی تھوڑا سا یونیک ہے کہ اس طرح سے بار بار ان کو بلایا جانا اور پھر ان کو ان کی تفتیش کرنا, ان سے پوچھنا, ان کو بہت دیر تک بٹھائی رکھنا. آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس سینسٹر اور ناٹ, ویدر اٹ واز ڈن ان رائٹ انٹینشن, یہ تو خیر الگ بات کی باتیں ہیں جو کر رہے تھے. لیکن یہ ایک ایکسکلوسیوٹی اس جی آئی ٹی کی ہے. لیکن اب آپ یہ بھی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ اتنی کمپریہنسو جی آئی ٹی جو ہے وہ 60 دن میں نہیں بن سکتی تھی.
صحیح,
لیکن یہ تو خیر اس کو ایک متنازع بنانے کے لیے
وہ تو جتنی بھی آپ سازشی نظریات لے کے آ سکتے ہیں, آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں, لیکن بنیادی سوال اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جو سوالات پوچھے گئے سپریم کورٹ نے جو ڈیزگنیٹ کیے اور جو ہینڈ اوور کیے گئے جی آئی ٹی کو, کیا ان کے جوابات اس فورم پہ دیے گئے نہیں دیے گئے, تو کیا آپ دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ سعید ابراہیم صاحب
جواب تو دیے گئے ہیں, ایسا دیکھیں جواب انہوں نے دیے ہیں, انہوں نے جی آئی ٹی بڑی کمپریہنسو بنائی ہے, یہی تو سارا. اگر وہ جواب نہ دیے ہوتے تو حکومت اتنی تل ملاتی نہ, سیدھی سی بات ہے. جو حکومت کے اندر اتنی بے چینی ہے, اتنی ریسٹلیسنیس ہے, یہ تو ان کو تبھی پتہ چل گیا تھا کہ جواب ہم سے لے رہے ہیں, یہ ہم سے پوچھ کیا رہے ہیں.
سعید ابراہیم صاحب کو بھی ذرا آن بورڈ لیتے ہیں. سعید ابراہیم صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. میں اسپیسیفکلی تو جو تھوڑا سوشل اینگل ہے اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن جنرلی ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگین پاکستان کے اندر اداروں کی مضبوطی, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو شفافیت کا تصور ہے کہ لیڈرس کو بھی اپنے ٹیکس منی ٹریلز ایسیٹس وہ کس طرح سے ڈسپلن رکھنے ہیں اور ان آرڈر رکھنے ہیں, کیا یہ چیزیں انڈلج ہو رہی ہیں سسٹم کے اندر, سوسائٹی کے اندر, عام آدمی سے لے کے اوپر قیادت تک؟
نہیں دیکھیے, بدقسمتی سے جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کرپشن کی ذہنی طور پہ اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ جہاں ہم سیاست کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ ہم کہتے ہیں کہ کرپشن کو مان لو, اس کو ایشو مت بناؤ. مطلب یہ کہ ہمارے ہاں کرپشن کے حوالے سے سینسٹیویٹی بالکل تقریباً ختم ہو گئی.
صحیح,
اور یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. اب دیکھیے, نواز شریف کے ایون جو حامی ہیں, حکومت کے جو حامی ہیں, وہ بھی اندر سے مانتے ہیں, بلکہ اگر ان سے تھوڑی بہت گفتگو کرو تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی. لیکن جواب بڑا دلچسپ آتا ہے کہ یہاں کون کرپٹ نہیں ہے, یعنی وہ یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کرپشن کا تو ہماری زندگیوں سے کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو ایک روٹین کی بات ہے. اور یہ درست بھی ہے کہ ہم اتنے بد نظامی میں گر گئے ہیں ان نظاموں کی وجہ سے, چاہے وہ آرمی نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, نہ مطلب ہے کہ سیاستدانوں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے. ہم عدالتی نظام جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم کوئی ایسی مثبت رائے نہیں دے سکتے, اور خاص طور پہ نیچے جو عدلیہ کا نظام ہے وہ تو رشوت کے لیے معروف ہے. پولیس اور عدلیہ لازم و ملزوم ہے اگر ہم مطلب ہے کہ قانون کی بات کریں تو.
صحیح,
اور جہاں انسان مجبور ہوتا ہے, کوئی شہری مجبور ہوتا ہے, وہاں سب سے زیادہ رشوت اسے دینی پڑتی ہے, چاہے وہ عدلیہ کے حوالے ہوا ہو چاہے پولیس کے حوالے سے. تو ہمارے ہاں کرپشن جو ہے اس کو کوئی ایسی سینسٹیویٹی حاصل نہیں رہی.
ٹھیک ہے, لیکن اب ہوئی ہے, اب ہوئی ہے.
جی جی,
کم اس مقدمے کے پس منظر میں سوشل میڈیا پہ بحث, میڈیا پہ بحث, اس پس منظر میں کم از کم اب یہ کوئی بحث کا موضوع بنا ہے کم از کم سوچنے کا؟
جی بالکل بن رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جمہوریت تو یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کرپشن پہ بات نہ کرو, اس کے مقابلے میں ایک دھڑا ایسا ہے جو بھلے نواز شریف کا شدید مخالف ہے, دل سے مخالف ہے, اسے پسند نہیں کرتا, لیکن اس کے علاوہ ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کرپشن کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہو رہا ہے اور یہ رائے بن رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف اگر کیس بنتا ہے تو اس سے ایک رائے تو یہ اسٹیبلش ہوگی کہ جناب دیکھیے, ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف ہی بات ہوتی ہے اور یہ میڈیا میں چل بھی رہا ہے معاملہ, اور اس میں میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز, یہ دیکھتا ہوں کہ اب اشارہ جو ہے ان اداروں کی طرف بھی ہو رہا ہے جنہیں ہم مقدس گائے سمجھتے ہیں, اور یہ ایک رائے اب بنتی نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ سیاستدانوں کو ان کی کرپشن کو پکڑیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں باقی اداروں کی طرف بھی بہرحال
دیکھنا پڑے گا.
بہت پازیٹیو میں سمجھتا ہوں
جی. ایک چند سیکنڈ کی مجھے بریک لینا ہوگی, بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور اپنے پینلسٹ کے ساتھ اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. پاناما گیٹ اور اس کے پاکستان کے اندر احتساب اور جواب دہی کے عمل پر اثرات, اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں, جناب نصرت مرزا صاحب ممتاز پولیٹیکل انالسٹ ہیں, اور دردانہ نجم صاحبہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور سعید ابراہیم صاحب سوشل سائنٹسٹ ہیں, فری لانس ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی زبردست ان کی فالوئنگ ہے. بات ہم کر رہے ہیں اس پس منظر میں پاناما لیک, اور اس پس منظر میں پرائم منسٹر اور ان کے خاندان کی جواب دہی, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اوور آل سماج پہ, ادارے پہ, سوچ پہ, اور پھر ملک کے اندر جو مختلف ادارے جو مشینری ہے اس کے اوپر. نصرت مرزا صاحب یہ بتائیے گا, جیسے سعید ابراہیم صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ظاہر ہے پھر موقوف نہیں ہونا چاہیے کسی ایک شخص یا کسی ایک لیڈر تک, تمام شعبے, خواہ ان کا تعلق انتظامیہ سے ہے, خواہ ان کا تعلق فوج سے ہے, ان کا تعلق صحافت سے ہے, جوڈیشری سے ہے, سارے کے سارے لوگ ان کو جواب دہی کے اسی طرح کے کڑے نظام سے گزرنا چاہیے ہے. اس کے لیے کیا طریقہ جو ہے وہ وضع کرنا ہوگا؟
دیکھیے, اس وقت جو ہے کرپشن جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے, اور یہ فیصلہ زرداری صاحب نے کہا کیا تھا کہ ہمیں اس وقت سمپتی ووٹ نہیں ملے گا, اس لیے ہمیں کرپشن کرنی چاہیے. کھلے عام انہوں نے یہ بات کہی اور اس کو وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد میں جب بھی کبھی ماشاء اللہ آیا, اس زمانے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ سیاستدانوں کا پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ ملٹری کا پاکستان ہے, تو اس میں آپ ہمیں ہمارا صرف کام یہ ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے خود کہا یہ کہ میرے میں نے ان کا اپنے شوہر کا نام لے کے کہا کہ آصف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکمرانی ممکن نہیں ہے اور ہمیں یہاں پر سے پیسے جمع کر کے ایک امیروں کی طرح سے باہر کے ملکوں میں رہنا چاہیے. بی بی نے خود مجھ سے یہ بات کہی, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے ان کی بات مان لی ہے, تو انہوں نے اس بات پہ جواب اس پر کا کوئی جواب نہیں دیا, تو میں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے مان لی ہے. تو لیکن وہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جب وہ 11 بجے سے پہلے پہلے, کیونکہ آصف زرداری صاحب 11 بجے اٹھتے تھے, تو اس سے پہلے پہلے وہ جو بیسک پہ جو فیصلے ہوتے تھے, بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے, وہ آصف زرداری کو سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کر لیا کرتی تھی. تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر کوئی جو رمک باقی ہے کہ وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی اس سے. تو ابھی ایک انتہا کو پہنچ گیا ہے یہ معاملہ, اور اس معاملے پر اس وقت پوری قوم اس بات پر اتفاق کر رہی ہے کہ ہمیں کرپشن سے جان چھڑانی چاہیے, اور یہ جب بھی کوئی بھی چیز بھی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر اب وہ اس کے پر فیصلے بیسیکلی قوم کر لیتی ہے, اس قوم کا یہ طریقہ کار ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ ہر سطح پہ سوچی جا رہی ہے. ہماری بہن نے کہا کہ صاحب وہ جو جی آئی ٹی بنی تھی, بے شک بنی تھی, تو وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور وہ جو ماڈل ٹاؤن والی ہے تو اس کی زد میں جو ہے شہباز شریف آ رہے ہیں نا, تو اب جس کے بعد میں اس کی باری ہے, اور اس میں بھی آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ان کو کوئی شہباز شریف کی بچت ہو رہی ہے, तो और जितने भी ये लोग हैं इसमें 80 के करीब ऐसे लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कि पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, और अब उनके पास मसला ये है कि जाए पना नहीं है और वो कहाँ जाएं। पीपल पार्टी में वो नहीं जा सकते, पीटीआई में वो नहीं जा सकते, क्योंकि बेसिकली उनका जहन जो है वो हुक्मराना है, वो चाहते हैं कि जो भी हाकिम हो उसके साथ वो।
लेकिन नसर साहब आपने देखा पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, वो सारे के सारे लोग उसमें शरीक थे जिनके बारे में ख्याल था कि वो पार्टी से निकलना चाहेंगे।
नहीं तो देखिए वो तो आखिरी वक्त तक अपना इंडिया नहीं देते। मैं आपसे एक बयान करता हूँ कि जिस जमाने में परवेज मुशर्रफ थे तो उस जमाने में परवेज मुशर्रफ का पर अटैक हो गया था और फिर जो पंजाब असेंबली के मेंबर थे उनको ले आया गया खुद मैंने जो आर्मी हाउस के अंदर इस्लामाबाद में। तो एक वहाँ के पंजाब के असेंबली के मेंबरान ने कहा कि भाई जो किसी कैंडिडेट होता है वो तो वोट लेने खुद आता है,
सही,
हम तो खुद देने आ रहे हैं, यहाँ पर हमें पानी तक नहीं मिल रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये उस वक्त तक मुंह नहीं खोलते जब तक कि वो इकदार में आदमी होता है, क्योंकि इनके इकदार के साथ में बहुत से मफादात वाबस्ता होते हैं, किसी को पानी चाहिए होता है, किसी को।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिर है इस रवैये की भी हौसला शिक नहीं होनी चाहिए, ये रवैया अगर पार्लियामेंटेरियंस के अंदर है तो उनकी भी ऑफकोर्स हौसला शिक नहीं होनी चाहिए, ताकि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर उनको खड़ा होना है।
इस वक्त तो ये मसला होगा ना कि अब पाकिस्तान में एक बात ये हो गई है कि एक इलेक्शन जीतना आसान नहीं है, करोड़ों अब करोड़ों से अरबों पे चला गया है इलेक्शन में खड़ा होना। एक पार्टी बनी थी एमक्यूएम जिसके अंदर जो है वो आदमी होते थे, फिर वो तो एंटी पाकिस्तान चली गई। तो अब मसला ये है कि और हमने तो ये 88 में बता दिया था कि ये एंटी पाकिस्तान है। तो मैं बहरहाल उस जमाने में क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद कह दिया था अल्ताफ हुसैन साहब ने, ये अब आपके जो प्रोड्यूसर साहब ने ये बात जानते हैं अच्छी तरह से। तो मेरे गुजारिश कहने की ये है कि और यहाँ पर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गरीबों को यहाँ पर और जो काबिल लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कोई सरपरस्ती करें,
उस तरफ आते नहीं।
ये जो इलेक्टेबल्स हैं वो जो है पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और वो फिर अपना पैसे बनाते हैं, जितना पैसा खर्च के आते हैं करके आते हैं।
दुर्दाना नजम साहब
कमा के जाना चाहते हैं।
दुर्दाना नजम साहब, एहतसाब सबके लिए, सिर्फ एक खानदान या एक पार्टी नहीं, क्या कहेंगी आप, इसको कैसे यकीनी बनाना होगा फिर?
एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ एक खानदान, ऑब्वियसली ये तो एक, लेकिन बात ये है ना कि देखिए इस किस्म का जो प्रेसिडेंट ये सेट हो रहा है कि एक हाई प्रोफाइल फैमिली जो इतना अरसे से रूल कर रही है पाकिस्तान को, उनका एहतसाब हो रहा है। लेकिन एहतसाब ऑब्वियसली, अब एहतसाब देखिए, अब ये भी हमें नहीं पता कि ये एहतसाब अगर तो ये पूरी इसको ये लेकर चलते हैं इसका इसके लॉजिकल एंड तक इसको इस एहतसाब को कम्प्लीट करते हैं फिर तो इसमें से कुछ निकलेगा भी। लेकिन अगर इसको भी सिर्फ इस्तेमाल किया गया जैसे हम करते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या थर्ड फोर्स है या सेकंड फोर्स है जो भी है यहाँ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, अगर अकाउंटेबिलिटी को जैसे हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है तो अपने कोई मकासद पूरा करने के लिए मुख्तलिफ अदारे इस तरह करते रहे तो फिर तो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। और दूसरी जो अहम बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी का मकसद ये होना चाहिए कि इसके अंदर से जो रिजल्ट निकले उसके बाद इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन होना चाहिए, अदारे मजबूत किए जाए। ये तो नहीं है ना कि एक अकाउंटेबिलिटी होगी उसके बाद दूसरी अकाउंटेबिलिटी हो फिर तीसरी हो, तो समथिंग हैज टू कम आउट ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस। और वो तभी होगा कि जब अदालत से भी आपने बात की है कि अदारे मजबूत करें, और फिर खाली ये नहीं है कि एक ही खानदान को आपने फोकस कर लिया उसकी अकाउंटेबिलिटी कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर से एहतसाब होना चाहिए। लेकिन पनामा गेट में और भी बहुत सारे लोग, पनामा का जो ये पेपर्स हैं जो ये लीक हुआ उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी उनका भी देखा जाना चाहिए। फिर ये है कि अक्रॉस द बोर्ड करें, आप पॉलिटिशियंस का हर दफा एहतसाब क्यों होता है? बहुत सारे हमारे जुडिशरी है, जुडिशरी को भी देखा जा रहा है, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे क्लिप्स व्हाट्सएप पे चल रहे हैं जिसमें एक्सपोज किया गया है कि जुडिशरी हमारे बहुत से सीनियर जजेस जो हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जो उनके ऊपर भी इस किस्म के कुछ इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने टैक्स इवेजन की है या इस तरह की चीजें की है,
तो सबको सबको बराबर उसमें से गुजारना चाहिए।
लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस जो हैं उनको हाई मॉरल से उनका स्टैंड होना चाहिए, उनसे उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक रोल वाकई रोल मॉडल हो,
क्योंकि उन्होंने बाकी सारे शोबों का खास तौर पे जाहिर है जो पार्लियामेंट है या इवन वो हुकूमत के अंदर है या अपोजिशन की, क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क का तमाम शोबों को उन्होंने जवाबदेह ठहराना होता है, तो इसलिए उनका जैसे आप कह रही
हैं लोगों का पैसा उनके पास होता है, टैक्स मनी उनके पास होती है, उस टैक्स मनी को उन्होंने इस्तेमाल करना है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग।
सो सियासत के अंदर अखलाकियात का अंसर उसको शामिल करना और उसको महसूस करने की जरूरत है।
बेईमान होंगे तो आप तो वो सारा पैसा ही खा जाएंगे जो कि हो रहा है पाकिस्तान में।
सईद इब्राहिम साहब ये बताइएगा, मैंने एक छोटा सा कोई ये ज़ाहिर कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, एक सवाल डाला है, लोगों से पूछा है कि अगर आप बिलफर्ज मौजूदा हालात के अंदर अगर आप वज़ीर आज़म के मुखालिफ हैं सियासी एतबार से और अदालत उन्हें मासूम करार देती है तो क्या आप नजर सानी करेंगे, या इसी तरह अगर आप उनके हामी हैं और अदालत उन्हें मुजरिम करार देती है तो क्या आप अपनी सोच में कोई बदलाव कोई तब्दीली लाएंगे? यकीन करें मुझे कोई ज़्यादा हौसला अफजा जवाब वहाँ से नहीं मिले हैं। जिसने जो अपना बुत बना रखा है वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है और उसी तरह उसके लिए वो दलीलें निकाल रहा है। सईद इब्राहिम साहब, इन हालात में किस तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, किसकी हम तवक्को रखें जो हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मौजू भी है?
कि एक रिस्क जो है उसमें इजाफा होगा, हामी जो है वो बगैर दलील के कुछ और बात करेंगे, मुखालफिन कुछ और बात करेंगे, एक शोर जरूर मचेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सजा होने की सूरत में सूरत हाल बेहतर होगी, ना होने की सूरत में हालात बहुत खराब होंगे और बल्कि कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगी, सियासी निज़ाम और तल्खी का शिकार होगा, लोगों में बेचैनी और बढ़ेगी, क्योंकि बहरहाल ये तय है कि पाकिस्तान में चाहे वो सरदारी खानदान हो और चाहे नवाज शरीफ खानदान हो, सबसे ज्यादा करप्शन के इल्जाम इन्हीं पे आए हुए, इससे पहले सियासतदानों पे इस तरह के संगीन इल्जाम आयद नहीं हुए। मैं ये समझता हूँ कि हमें अब इस तरफ आना चाहिए, इसे मिसाल बनाना चाहिए और इसी से हम शायद आगे बढ़ेंगे बाकी इदारों की तरफ कि हम उनकी तरफ भी ज्यादा एतमाद के साथ उंगली उठा सके, वगरना ये मामलात फिर और खराबी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तानी सोसाइटी में किसी मुस्बत तब्दीली की तो मैं नहीं समझता कि हम रख सकते हैं।
मुख्तसर अब चार मिनट तीन मिनट मेरे पास और तीनों मेहमानों से ये सवाल करना है, तो आप ही सईद इब्राहिम साहब से आप शुरू करें, हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं कि इस जैसे आपने खुद कहा कि सज़ा की सूरत में नतायज मुख्तलिफ हो सकते हैं और मासूम करार पाए तो उसका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक शफाफ ट्रांसपेरेंट निज़ाम अकाउंटेबिलिटी का वो अगर देना है सो उसको ये चीज़ कितना कंट्रीब्यूट करेगी और उसमें इंडिविजुअल लेवल से लेके इंस्टीट्यूशंस लेवल तक क्या कंट्रीब्यूशन आने की जरूरत है?
देखिए मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए पॉलिटिशियंस जिम्मेदार हैं, उन्होंने निजाम बनाना है, लेकिन अलमिया ये है कि पॉलिटिशियंस आसमान से नहीं उतरेंगे। हाँ, जब पाकिस्तानी अवाम किसी पॉलिटिशियन के पीछे खड़ी होगी और वो अच्छा आदमी होगा तो इम्कान ज्यादा है, वरना मैं समझता हूँ कि कोई इम्कान ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि करप्ट पॉलिटिशियन इदारों से सच्ची बात है कि डरते हैं, उनके अंदर जुर्रत नहीं है कि वो कोई ऐसी तब्दीली ला सके।
नुसरत मिर्जा साहब,
ये कुछ ना कुछ तो ये जो एक ट्रेंड है बहुत शदीद हो गया है करप्शन का, ये ट्रेंड बहरहाल अब यहाँ पर इसको हमें बंद बांधना होगा और मैं समझता हूँ कि बंद बन जाएगा। ये जो शिद्दत है करप्शन की ये रुकेगी, एक तो ये बात है। नवाज शरीफ साहब को अगर सजा हो जाती है तो फिर जरदारी साहब भी इसके जुमरे में इसके उसमें घेरे में आ जाएंगे। इसके अलावा जो इदारों की बात कर रहे हैं, वहाँ इदारों के अंदर अगर आप देखें कि ब्रिटिश राज के अंदर खुद पुलिस के अंदर और फौज के अंदर एक बड़ा सिस्टम, बहुत मजबूत सिस्टम है खुद एहतसाबी का, और अगर उसके अंदर जो अपना जैसा कि ब्रिटिश में आपके देख लें, अमेरिकन का भी मैंने देखा पढ़ा है, लेकिन ब्रिटिश का अगर हम ज्यादा जायजा लें तो वहाँ पुलिस को भी जो है एहतसाब में इतना उनके अफसरान एहतसाब से गुजारते हैं प्रोसेस को, तो वो एक्टिवेट अगर ऊपर से, क्योंकि अगर इंसाफ और करप्शन होना शुरू हो तो नीचे तक ये बड़ी है, फिर
30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है, 30 सेकंड है दुर्जाना नजम साहब, क्विकली फाइनल हतमी सम्राट इसके असरात।
जी मैं यही बात कहूंगी कि अकाउंटेबिलिटी तभी ये प्रोसेस हमें फायदा देगा جب ہم اس پروسیس کو لوجیکل اینڈ پہ لے کے جائیں گے, لوگوں کو جو بلیم جہاں جو ریسپانسیبل ہیں ان کو سزائیں یا جو بھی ہونا دینا چاہتے ہیں اس کو دیں, الزام ملزم کوئی پتہ تو چلے نا کہ کس نے کیا غلطی کی ہے, کہاں کوئی مجرم ہے.
لوجیکل اینڈ اور اسی سے پھر امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ دردانہ نجم, آپ ہمارے ساتھ تھیں. نصرت مرزا صاحب آپ کے ہم مشکور ہیں, اور سعید ابراہیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسد حسن اور اسفر امام کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.